चीजें सीख चुके हैं, जैसे कि हम आत्मा है और आगे हो चुकी है। कार्य वो है जो आगे वाला शरीर बनाता है। बहुत सुंदर भाषा, परिभाषा। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारा शरीर बनाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो उपद्यते। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो उपद्यते। स्त्रियो उदर प्रविष्ट पुरुष रेत कण आश्रय। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो। दैव नेत्रेण, देव के नेत्र से, देव की गाइडेंस से हमारे कर्मों के मुताबिक जंतुर्देहो, जंतु जीव, जीव को देहो उपद्यते, उनको देह मिलता है। और स्त्रियो उदर प्रविष्ट, मादा फीमेल शरीर में वो प्रविष्ट होता है। कैसे? पुरुष रेत कण आश्रय, पुरुष के रेत के कण के आश्रय से वो स्त्री का उदर का आश्रय लेता है। कितनी सुंदर शास्त्र में बात है। कोई उपजाए उसको, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अटपटी भाषा में लिखा गया है। कर्मणा देव नेत्र, हमारे कर्मों से हम हमारी गति बनाते हैं। सो सेल्यूरी, आप अगर आम का पेड़ बोओगे तो उसमें आम का पेड़ ही आपको मिलेगा, उसमें अनार नहीं मिलेगा। अगर बावर का पेड़ बोओगे तो कंटक ही मिलेंगे, उसमें आम का फल हो ही नहीं सकता। सो जो बोओगे सेल्यूरी, जैसी करणी वैसी वर्ण, जैसा कार्य करेंगे ऐसा पाएंगे। समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम इस जीवन में भी कई चीजें करते हैं, उनका तुरंत हमको फल मिलता है। कई चीजें करते हैं उनका फल कई वर्षों के बाद मिलेगा, बाद मिलेगा। कई कार्य करते हैं उनका फल हमको जिंदगी के अंत में रिटायरमेंट के रूप में मिलेगा या कुछ भी। और कई कार्य करते हैं जिसका फल हमको ये शरीर में नहीं मिलते हुए, जो हम दूसरा शरीर पैदा करते हैं अंदर, सटल बॉडी, सूक्ष्म देह, मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म देह हमारा है, वो देह अभी से ही हमारे कार्यों के मुताबिक बनता रहता है हर रोज। जैसे शेर जैसा हमारा तमोगुण है, या तो सबसे अच्छा उदाहरण आजकल, आज भी दिल्ली बंद तो हमारी आंखें भी 12 बजे तक बंद है ना। तो जिसको आंखें बंद करके सो रहना है, सोना बहुत पसंद है, तो ये इस जीवन में सटल शरीर को, सूक्ष्म देह को रीछ बोलते हैं, रीछ की तरह, पोलर बेयर, पोलर पोल पे बेयर जो होते हैं व्हाइट, सोते रहते हैं 6 महीना तक सोते हैं। दिल्ली बंद, हमारी आंखें भी बंद, तो अगले वाले जन्म में भी आपकी आंखें 6 महीने के लिए बंद, क्योंकि आप आपकी इंद्रियों को अभी से ही ऐसी ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, तो अगले जन्म में आपको वही मिलेगा। भगवान आपकी इच्छा और आपकी स्वतंत्रता में कोई आड़खेली नहीं करते, भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामा, वो एक है जो सबकी कामनाएं पूर्ण करता है। भगवान का काम एक ही है कि जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करना। तो आप जैसा सोचोगे वैसा आगे वाला रास्ता आपका होगा, उसमें संबंध में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले जीवन में बच्चे को 25 साल के बाद अच्छी नौकरी अच्छा धंधा मिल जाए, तो 25 साल तक माँ बाप उनको पढ़ाते हैं और माँ बाप खुद स्कूल में उनके साथ भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, घर आते हैं तो उनको वही लेसन सिखाते हैं, है कि नहीं? बच्चों के साथ माँ बाप भी स्कूल में, कोई जरूरी नहीं, बच्चे पढ़ेंगे उनके कर्मों के मुताबिक, जितना कर्म उनका था उनने जैसे आगे से ट्रेनिंग लिया है अगले जन्म में से भी, वैसी बुद्धि वैसा मन वैसा शरीर से सब कुछ, कॉन्शियसनेस चेतना सब कुछ वैसा लेके आता है। मोर के अंडे होते हैं उनको चितरने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से अंदर रंग पूरा हुआ होता है कि नहीं? जब मोर के अंडे में से मोर पैदा होता है तो उनको कोई पेंटर पेंट करता है कि इनका ऐसा रंग होना चाहिए? आगे से बनता है, आगे से। तो अगले वाले जीवन का अभी हम बना रहे हैं, उसमें समझने में तकलीफ क्या, कोई तकलीफ नहीं। और आज का विषय कई लोग कहते हैं कि हमको ये विषय के लिए जरूर सुनना है कि अच्छे लोगों को बुरा क्यों मिलता है, अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। तो अच्छे लोग अभी हैं रिफॉर्मेशन, आप अभी कुछ अच्छे बन गए, लेकिन गत जीवन में आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे किसको पता है। गत जीवन के कर्मों का फल आपको यही मिलता है, जैसे कि एक पंखा बहुत स्पीड में चलता है, बाद में उनकी स्विच ऑफ कर दो तो तुरंत बंद नहीं हो सकता, थोड़ा दिन थोड़ा समय चलेगा, बाद में धीरे 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 बंद हो जाएगा। उसी तरह कर्मों के जो फल है वो कभी तुरंत मिलते हैं, कहीं थोड़ी दूरी पर मिलते हैं, कहीं उससे भी आगे जाके मिलते हैं, कहीं अगले जन्म में भी मिलते हैं। तो अच्छे आप अभी हो, और अच्छा कौन है वो भी तो परिभाषा करनी चाहिए, अच्छा कौन है। ये पृथ्वी में कोई अच्छा नहीं है, पृथ्वी पर हर जीव जल में है, पृथ्वी के हर जीव जल में है। जल इसलिए कि भगवान के द्वेषी है जीव, इच्छा देश द्वेष समुत्कंठा, इच्छा और द्वेष ये दो हम करते हैं, इसलिए हमको यहां भौतिक जगत में फेंका जाता है, अवतरण नहीं है फेंका जाता है। जैसे जेल में पुलिस लोग चोरों को या जेलियों को पकड़ के लाते हैं तो ऐसा नहीं कि छोड़ देते, धक्का मार के जा अंदर, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं, पहले तो धक्का लगाता है। इसी तरह ये सब भौतिक जगत में जीवात्मा है, उनको फेंके गए, और अभी भी ये शरीर छोड़ के आप फेंके जाओगे कहीं नर्क कहीं स्वर्ग कहीं फेंके जाओगे। अगर आपने आश्रय श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, सर्व आश्रय का आश्रय नहीं लिया। आश्रय देने वाला एक है और वो सबको आश्रय दे सकता है, लेकिन हम विमुख। तो ये कर्मों का फल जो है हमको जरूर मिलता है। और तीन प्रकार के कर्म का समझौता आपको मिल गया, कर्म विकर्म अकर्म। तो अकर्म एक ऐसी चीज है कि जो जिसका कोई फल नहीं, उसका एक बुरा फल नहीं, पुण्य कर्म नहीं, पुण्य फल नहीं, या तो नरक खराब परिणाम है। अकर्म मतलब अच्छा बुरा नहीं, अकर्म मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ही मिलेंगे, उनको बोलते हैं अकर्म। यज्ञार्थे कर्माणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यत्र वो कर्म आपको बंधन में डालेगा। यज्ञार्थे कर्माणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन। तो कर्म यज्ञ मतलब कि यज्ञ पुरुष कृष्ण विष्णु, ये कृष्ण यज्ञों के भोक्ता है। मैंने कल कहा था यज्ञ भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम श्रुहुत सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। तो यज्ञों के भोक्ता है भगवान। भागवत गीता के चौथे अध्याय में 14 श्लोक से लेके 10 श्लोक ये बात बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। यहां मैं पढ़ने की चेष्टा नहीं करूंगा, आप जरूर पढ़िए भागवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। तो एक कर्मों से अन्नात भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अन्नात भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञात भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। हमारे कर्म हम करेंगे तो उससे यज्ञ होता है, और यज्ञ से यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण की तुष्टि होती है। तो ये चक्र है, अन्नात भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव और यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ, यज्ञ से बारिश, बारिश से अन्न, अन्न से कर्म, कर्म से यज्ञ, चक्र। ये मनुष्य योनि के लिए भगवान ने चक्र बनाया, लेकिन हमें चक्र को तोड़ते, यज्ञ नहीं, खाली कर्म, कर्मी और बस। हमारे कर्म का किया हुआ उपार्जन सब कुछ मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कर्मी। लेकिन हमारे कर्मों से उत्पन्न हुआ जो है वो सब यज्ञ के लिए, यज्ञ पुरुष के लिए, ये अकर्म है। तो ये चक्र है, उनको आप काट डालोगे तो आप पापी हो, चोर हो, भगवान कहते हैं पापी हो। और पापी मतलब नरक, न चोर मतलब नरक। स्तेन एव हि यज्ञ शिष्टा सिन्न संतो मुंचते सर्व किल विषय ही भुजंते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणा। यज्ञ से शेष बचा हुआ प्रसाद जो लेते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, नो नर। लेकिन भुजंते ते अघम पापा ये पचंत आत्म कारण, जो अपने पेट के लिए जो पकाता है वो घोर पाप खाता है, क्योंकि उनने वो चक्र तोड़ दिया, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, ये चक्र तोड़ दिया। तो ये कर्मों की श्रृंखला है, एक कर्म से दूसरी, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, चौथा, श्रृंखला। और ये श्रृंखला में से कभी नहीं बच पाओगे, कभी नहीं बच पाओगे। जैसे प्रभु जी ने याद दिलाया कि क्रिंग रुगा कि उनके पास समय नहीं था, तुमने याद दिला कि हम, मैं बात कहूंगा। तो किंग नृग जो थे वो बहुत बड़े राजा थे द्वारिका के नजदीक, और वो हर रोज लाखों गायों का दान करते थे, और वो भी सुंदर सिंह वाली और सोने से जड़ित और दूध देने वाला ब्राह्मणों को दान देते, गाय का दान देता था। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय, जो गाय को ब्राह्मण को दान दिया था, जो ब्राह्मण को दान दी गई, हजारों गायें थी, उसमें से एक गाय वापस आके उनके निचड़े में घुस गई, वापस आ गई। दूसरे दिन वही गाय जो लाखों में गाय दान देता था, तो दूसरे ब्राह्मण को वही गाय वो गायों के साथ दे दी। तो छापा लगता है गायों पर, पता चल गया है तो मेरी गाय है, आपने ये मेरी गाय उन ब्राह्मण को क्यों दान दे दी? झगड़ा हुआ दोनों ब्राह्मणों के बीच में, और वो ब्राह्मण कहता है मुझको तो मेरी ये गाय ही चाहिए। वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये मेरी गाय है, मुझको मिल गई है। दोनों के बीच में झगड़ा। तो राजा कहता है कि भाई आप ये गाय छोड़ दो, इन गाय के इंस्टेड ऑफ दिस गाय आई विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ अदर गाइस काउस, दूसरी कई गायें आपको देता हूं इसके बदले में, इनको छोड़ दो। वो ब्राह्मण नहीं मानता। ये थोड़ी सी त्रुटि है, थोड़ी सी भूल है, राजा नहीं चाहता था लेकिन हो गए, कर्म के बंधन में पड़ गए। तो दूसरे जन्म में उनको द्वारिका में लिजर्ड बनना पड़ा, लिजर्ड छिपकली जैसा कुआ में। तो बाद में आगे स्टोरी है, भगवान के पुत्र परिवार सब लोग आते हैं वहां, तो देखते हैं कि यहाँ कौन है, तो उनको नीचे निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो निकल नहीं पा रहे। बाद में कृष्ण भगवान को पुत्र लोग कहते हैं कि क्या, बाद में भगवान आते हैं, उनको बाहर निकलते हैं, पाप मुक्त हो जाता है। पाप तो नहीं था लेकिन कर्मों के श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। शॉर्ट में स्टोरी है कि भगवान यहाँ कहते हैं भागवत गीता में कि गहना कर्मणा गति, कर्मणो ही बोधव्यम अकर्मणो ही बोधव्यम, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणत अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति बहुत गहन है, इंट्रिकेट लॉज ऑफ कर्म, गहना कर्मणा गति। देखो कितनी सरल कर्म, पुण्य करता था, करोड़ों गायों का पुण्य किया, एक थोड़ी सी त्रुटि के लिए उनको कर्मों की गति लग गई, गहना कर्मणा गति। ब्राह्मणों के बात है, ब्राह्मण भूदेव है, जमीन पे देव है ब्राह्मण लोग, कुछ भी कर सकते हैं, उनका शक्ति है ब्राह्मणों की, ब्रह्म शक्ति। तो गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट गहन है। मीरा कहती है कर्मनो संगाथी राणा मारू कोई नथी, एक ज गाय ना दो बछड़ा, एक घाचीड़ा के घेर तेली के घेर तेल पीसता है, 12 घंटा चलता रहता है, दूजो बनो शिव जी को पोठियो रे, और दूसरो जो गाय को बछड़ो था बछड़ा था वो शिव जी का पोटिया बन गया। हर रोज लोग उनकी आरती पूजा लड्डू, एक ही गाय के दो बछड़े। गहना कर्मणा गति, मीरा आगे कहती है कि एक पर्वत के दो पत्थर, एक जगह से एक राइट और एक लेफ्ट, एक जगह से दो पत्थर निकले। एक पत्थर की सुंदर प्रभु जी की मूर्ति होती है, लोग पूजते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भोग लगाते हैं, और दूसरा आसान धोबीड़ा के घाट, लोग उनके ऊपर झीकते हैं, झीकते हैं। गहना कर्मणा गति, कर्मणों संगाती राणा मारू कोई नहीं, मेरे कर्म के साथी कोई नहीं है, हमको ही झेलना होगा। इसलिए साल में समझ जाओ कि अकर्म नहीं करोगे पछताओगे, फंस जाओगे, इतना फंस जाओगे कि कभी भी ये भौतिक मृत्यु रूप संसार में से कभी भी निकल नहीं पाओगे। ये मनुष्य योनि में ही, वो भी ये धार्मिक लोगों से ही ये कर्म की गति रुक सकती है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में युक्त होके अकर्म करके सब कर्मों को जला सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्दहति, कर्मों की गति, कर्मों के जो सीड्स हैं उनको निर्दह, निर्दहति मतलब जला देने। कर्माणि निर्दहति गोप जन्म से लेके इंद्र, इंद्र गोप जन्म से लेके इंद्र तक सारे जीवात्माएं एक कर्मों में फंसे रहते हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि ये श्रृंखला, कर्मों की श्रृंखला से हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि तुम मेरे पास आ, मैं तुमको मुक्ति दूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मैं वचन देता हूं, अर्जुन को बैठ बोलते हैं तू जोर से ऐलान कर, घोषणा कर, क्या नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं पाता, मेरी भक्ति भी कभी नाश नहीं पाती। भक्तों के कर्म जीरो हो जाते हैं। अगर हमसे घोर कर्म भी हो गए तो एक नाम से अनंत कोटि जीवन का जो पाप है हम धो सकते हैं, एक नाम मात्र से। बोलो हरे कृष्णा। अगर आपने अपराध, नाम अपराध के बिना अगर ऐसा नाम ले लिया, आपके सब कर्म जल के भस्म। कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा, भगवान की भक्ति से हमारे सब कर्म जल जाते हैं। कौन नहीं करेगा? अभी तो सबको होगा कि करेंगे, क्यों नहीं। लेकिन जैसे मंदिर छोड़ दिया सुर तो कोई हर्जा नहीं है, मंदिर छोड़ दिया तो आप नाम साथ में लेके जाओ, क्या तकलीफ है। नाम ये कलयुग में कितना सरल कंसेशन के साथ, सब्सिडी के साथ भगवान ने उदारता से नाम दिया, और वो नामों में भगवान ने अपनी सब शक्ति का संचार किया, और वो नाम लेने में भगवान ने कोई नीति नियम नहीं रखे। फिर भी दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि न अनुराग, मेरा दुर्भाग्य है कि इन नामों के ओर रटन करने के लिए मेरा कोई अनुराग नहीं। दुनिया की सारी चीजें करते रहेंगे लेकिन भगवान का नाम, जैसे बताया प्रभु जी ने, बूढ़ों को बोलेंगे तो हमारे पांव नहीं चलते हैं, आंख नहीं चलती है, कान नहीं चलते हैं, वहां कैसे करे भक्ति? और जवान को बोलेंगे अभी तो हमारी इंद्रियां बहुत बलवान है, खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड फॉर हु हैज सीन द नेक्स्ट लाइफ, दैट इज द फिलोसॉफी। दूसरी जिंदगी किसने दे? दूसरी जिंदगी, अगली जिंदगी किसने देखी? अभी तो ड्रिंक मैरिड, सही फिलोसॉफी है। तो भगवान कितने दया दयालु हैं, इनकी दया की कोई सीमा नहीं है। क्यों? इतने सारे शास्त्र और उसमें इसमें भी ये सुंदर भागवत गीता जो सरल है समझने में, अगर समझ में नहीं आती है तो एक श्लोक समझ लो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर, बस इतना एक श्लोक तो समझ में आ सकता है कि नहीं? मेरे में मन रख, अगर मन नहीं रहता है तो अभ्यास कर, अगर मन नहीं रहता छोड़ो, मद्या से मेरी सेवा कर, भगवान का नाम का रटन करके मुंह से और जीवा से सेवा कर, सेवन कर, भव मत भक्तो मेरा भक्त बन। तकलीफ क्या है? भगवान को बोलो कृष्णा तवास्मि, हे भगवान मैं आपका हूं, मैं जैसा हूं वैसे स्वीकारो। इतना बोलने में भगवान आपके ऋणी बन जाती है। ये आपका बेटा अगर आपसे बिछड़ गया, आपको गाली दे के भाग गया, आपसे नहीं रहता है साथ में, लेकिन द मोमेंट ही कम्स बैक, जब वो आता है और आपको प्रार्थना करता है मेरी गलती माफ करो पिता, पिताजी मेरी गलती माफ करो, मुझको स्वीकार, कौन सी माँ और पिता है जो नहीं स्वीकार? तो ये भगवान ऐसे दया दयालु है। पितामहम यस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान हमारे माता पिता पितामह, दो हाथ फैलाए हुए हमको बुला रहे, इसलिए उनने शास्त्र भेजे, शास्त्र बोले, लीलाएं की, उसने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, गुरुओं को भेजा, आचार्यों को भेजा, संतों को भेजा, ऋषियों को, मुनियों को, सबको भेजते रहते भगवान। क्यों? ये जीवों को वापस लाने के लिए। एक जीव भी अगर आप वापस ले जाओगे किसी को प्रचार करके, भगवान आपको कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं, और आपका भगवत धाम जाना गारंटी। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, ये भूमि पर दूसरा कोई मुझको प्रिय नहीं है जो ये भागवत गीता का ज्ञान का प्रचार करके मेरे पास किसी को लाएगा, उससे मुझको कोई दूसरा प्रिय ज्यादा नहीं है। भगवान ने भागवत गीता में 18 अध्याय में कहा है अन्य प्रिय तरह को, तो भगवान हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, लोटो लोटो कहते तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम विसंते तद अंतरम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो मेरे पास आएगा। जन्म कर्म से भगवान दिव्य है, वो जो जानेगा भगवान को इस तरह समझेगा, वो है देह छोड़ के भगवान के पास। यान्ति मद्याजिनोपि मां, मेरे पास आ, मेरी पूजा करके मेरे पास आ। भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए आपको आपको भी भगवत जैसा भगवत्ता प्योर पवित्र होना पड़ेगा। भगवत धाम पवित्र है, भगवान पवित्र है, परम पवित्र, सब कुछ वहां साम्राज्य अलग है, तो उसमें आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा। जैसे गंदे जाओगे तो वहां रह नहीं पाओगे, तुरंत खुद वापस आओगे भगवान की एनवी, भगवान के भक्तों की निंदा करके, क्योंकि हमारी चेतना हमने आध्यात्मिक नहीं बनाया, इसलिए आध्यात्मिक जगत में हम फिट हो ही नहीं सकते। कैसे फिट हो? जैसे कि कोई MBBS IIM कॉलेज है और उनमें कोई MBA करने गया तो किसी सिफारिश के चला गया, उनके मार्क्स 40, 33 और वहां रैंकर से 90, 95, 98 तक के कैसे भी घुस गया, लेकिन आगे के कैसे कर सकेगा? घुस तो गया लेकिन वहां जो पढ़ाई है वो रैंकरों की है, कैसे वो वहां रह सकता? पास ही उत्तीर्ण नहीं होगा, IAS परीक्षा में बैठ गया, चलो बैठ तो गए कैसे भी गए। कहने का मतलब उदाहरण तो बहुत ग्रॉस है, लेकिन भगवान का धाम जो है वहां जो पवित्रता सच्चिदानंद साम्राज्य है, हम वहां तभी जा सकते हैं जब हम सच्चिदानंद स्तर पर रह सकते हैं। गंदे स्तर पर रहोगे तो आप खुद वहां फिट नहीं हो जाओ, फिट नहीं हो सकोगे। इसीलिए कर्माणि निर्दहति भक्ति च, कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति बाजा, भक्ति से हमारे कर्म सारे नष्ट हो जाते। तो एक भक्ति ऐसी चीज है जिससे हम एक कर्मों की श्रृंखला से बच सकते। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? तो इसीलिए कि भगवान की यूनिक पोजीशन समझो, भगवान पार्शियल नहीं है, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सब भूतों सब आत्माओं के लिए इम्पार्शियल, समोहम सर्वभूतेषु नमदेशस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम, मयि भजन्ति तु माम भक्त्या। भज शब्द भगवान ने हर 5 श्लोक में भज शब्द भागवत गीता में कहा, भज भक्त बन, भजन कर, कीर्तन कर, मन मना भव मत भक्तो। इसीलिए भगवान ने ये शब्दों का प्रयोग किया है कि आप भगवान के धाम में पहुंचने का जो स्वभाव है चेतना, उनको अभी ही आप शुद्ध करो। तो इसलिए भगवान के समोहम सर्वभूतेषु, सो ये कर्मों की गति है वो इंटीग्रेट है। आप अभी कर्मों से कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हो, लेकिन पास कर्म कैसा था और आगे वाला कैसे सोचते हो आप, उसके मुताबिक अच्छे को बुरा फल, अच्छे को बुरा दुख, अच्छे को बुरा दिखाई दे रहा है। और अच्छा कौन है उनकी परिभाषा तो मैं करता ही नहीं, मैंने इतना कह दिया ग्रॉस सेंटेंस कि ये पृथ्वी पर कोई अच्छा नहीं है। तो अच्छा कौन है वो भी कहते हैं, भागवत कहती है, कहते हैं कि सर्वई गुण ही समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा स्वरूपेण धायतो बही यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। जो अकिंचन होके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो भक्त सर्वगुण संपन्न है। किसके सर्वगुण? देवों के सर्वगुण। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै समासते सुरा, सुरा देव सब देवों के अच्छे अच्छे गुण उन भक्त में होते हैं। सर्वदेव मयो गुरु, गुरु या तो अच्छे भक्त वो सर्वदेव मयो इज सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, सब देवताओं के समान है, सब देवताओं की अच्छी अच्छी क्वालिटीज गुण उनमें मौजूद होते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, भगवती भक्ति, भगवती भक्ति शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति दिव्य भक्ति। तो ये भक्ति जो करता है भक्त उनमें सब गुण होते हैं। हराव भक्त से कुतो महद्गुण, अगर वो भक्त नहीं है तो उनमें कई गुण दिखाई देते, सुंदर है, हैंडसम है, पैसा वाला है, बहुत ज्ञानी है, पीएचडी है, बहुत निराकार ब्रह्म में स्थित है। नो गुण, कोई गुण नहीं उनका। भगवान के भक्त नहीं है तो उसमें कोई गुण नहीं हो सकता। अच्छे कौन है? अच्छे, और भगवान के भक्त को कभी दुख नहीं हो सकता। मैंने पहले भी दोहराया था कि भगवान के भक्त में केशग्नि शुद्ध भक्ति पहले तो आपका क्लेश काट देती है, आपके पास दुख आ ही नहीं सकता। अगर आता है तो ऐसा लगता है कि ये दुखी है, लेकिन वो भक्त दुखी नहीं है। मीरा को जब जहर मिला तो सब लोग दुखी हो गए, मगन होके मीरा पी गए। मीरा दुखी होके नहीं पी, ऐसा नहीं शब्द बाबा उपयोग किया। लोग बोलते हैं दुखी मीरा, मीरा को दुखी कहते हैं, लेकिन मीरा को पूछा आपने कि वो दुखी है? पांडवों को पूछा वो दुखी है? लोग कहते पांडव बहुत बहुत दुखी थे। ये भगवान का, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए लगता है कि उनको दुख हो रहा है, लेकिन भक्तों को कोई दुख नहीं। अगर भक्त दुखी है तो समझना कि वो भक्त नहीं, उनकी भक्ति कुछ कच्ची है। तो कहने का मतलब है कि कौन अच्छा है, अच्छे को बुरा क्यों होता है, तो अच्छा कौन है पहले वो तो परिभाषा सुनो। सब लोग कहते हैं मैं कितना अच्छा हूं, दानवीर हूं, कंबल स्कूल तालाब वगैरह में खुदाई करके पानी पिलाता हूं, हॉस्पिटलें खोलता हूं, स्कूलें खोलता हूं, मैं अच्छा हूं। ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो श्री कृष्ण भगवान की भगवती भक्ति करता है। ये तो अपने खुद का काम कर रहा है। स्वर्ग चाहिए उनको, अच्छी परी चाहिए, अच्छी अप्सरा चाहिए, अच्छा सोमरस चाहिए, अच्छा नंदन वन पार्क्स, उनको ये सब चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो भगवान का भोग लगा के बाद में आप खाना खिलाओ, बाद में भगवान की स्टडी पहले करवा के स्कूल में दूसरी स्टडी करवाओ। ऐसा भगवान के संबंध, हमारी लॉर्ड चैतन्य स्कूल है यहाँ, लॉर्ड चैतन्य स्कूल रोहिणी में, पहले भगवान की बात और आगे आपकी पढ़ाई पीएचडी तक की करवाएंगे, लेकिन भक्त बनो पहले। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वै गुणै समासते सुरा, हराओ भक्त से कुतो महद्गुणा। अगर अभक्त है उनमें कितने भी गुण आपको पाए जाते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, धनवान है, ब्यूटीफुल है, कई कई गुण है, वो फिलैंथ्रोपिक दानवीर भी है, लेकिन कुतो महद्गुण, वो उनमें गुण नहीं है। कुतो महद्गुण, महद्गुण नहीं है कुतो, क्योंकि स्वरूपेण धावतो बही, बाहर की सपाटी पे वो घूमता रहता है, अंदर जो हानि है उनको टेस्ट करना नहीं मिलता। इनको बोलते हैं कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी वगैरह वगैरह, धर्मी, जैसे प्रभु जी ने थोड़ा टच किया था चैतन्य महाप्रभु का श्लोक, पृथ्वी पर कई लोग हैं तो कई लोगों में कई कर्मी है, कई धर्मी है, उससे आगे बढ़े तो ज्ञानी है, और उससे आगे बढ़े तो दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। इन सबों में एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो भक्त सर्वै गुणै समासते सुर, सुरों की, देवों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज, अच्छे अच्छे गुण संपन्न होता है वो भक्त। तो ये भक्ति है वो आपके कर्मों की श्रृंखला को जला देगी, आपके कर्मों की श्रृंखला जीरो, नो गुण। आपको बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म नहीं, मतलब स्वर्ग नहीं और नरक नहीं। नरकों का वर्णन करेंगे तो आप घबरा जाओगे। एक छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारोगे, मच्छर चींटी वगैरह, तो ऐसा नर्क है कि वहां ले जाएंगे और आपके शरीर में से सारे धागे निकालेंगे, मतलब सुई से धागे परोएंगे, बाद में धागों से खींचेंगे, ऐसा नर्क है। अगर नाम जानना है तो मैं नाम भी बता सकता हूं आपको, लेकिन श्रीमद् भागवत में पांचम स्कंध में अगला आखिरी जो अध्याय है उसमें ये सब नरकों का बयान है, आप वहां पढ़ सकते हो। दूसरा एक नरक है कि अगर आप मीट फिश एग्स खाना चाहते हो तो ऐसा नरक है जहां आपको ले जाएंगे बड़ा तावा, तावा मतलब पकोड़े बनाने के लिए जो तेल कढ़ाई, कढ़ाई वेरी गुड, मेरी हिंदी इतनी अच्छी, मैं हिंदी नहीं जानती हूं, तो इतना बड़ा तावा जिसमें ऑयल उबलता है और उबलता हुआ ऑयल उसमें आपको भूनते हैं मतलब फ्राइड करते हैं, और फ्राइड करके कोई आप बाहर निकलना चाहते हो तो आपको जो यमदूत हैं आपको त्रिशूल से अंदर फिर से डालते हैं, फिर से भूने जाओगे फ्राइड, मीट खाने का मीट फिर से मासूम प्राणियों का आपको हत्या करके खाना है तो ये अगले जन्म में आपको, ये जन्म के बाद तुरंत आपको नरक में ले जाएंगे यमदूत। दूसरा अंधता मिश्र नरक है, बड़ा दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा, रोटी पकाने का जो भी बोलते हो आप, कढ़ाई तावा तवी जो भी रोटी पकाते हो ना तवा, तो ये उसके ऊपर अंदर से आग है और लाल, बिल्कुल लाल है तावा, ऊपर से सूर्य की टॉर्चिंग हीट बहुत गर्मी तापमान, और आपको उसके ऊपर फेंका जाता है और बाहर निकलने का प्रयत्न जैसे करते हैं वैसे ही यमदूत आपको अंदर धकेल देते हैं, बाहर निकलने से आप डांसिंग करते रहो कई कई वर्षों तक, यह है नरकों की गति। अगर पीना शराबी, कई लोगों को उसको मिला नहीं नाम सब इसमें, लेकिन कईयों को पीने की आदत है शराब, शराब पीने वाले वे ये खराब कर्म है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, ये महापाप है, ये पापों का आपको नरक, जैसे पीना शराबी तो शराबी को नरक में ले जाते हैं, नाम भूल गया, तो वहां आपका मुंह जबरदस्ती से खोलते हैं और उसमें रेड हॉट लोहा आपके मुंह में डालते रहते हैं और आप घबरा इतना चिल्लाते हो लेकिन पोरिंग कॉन्स्टेंटली इन योर माउथ, ये इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी पियो, पीना है पियो, चाय कॉफी सब कोई पीते हैं, आपका हाल ये है, भागवत कहती है इलिसिट सेक्स, अगर इलिसिट सेक्स अवैध संबंध तो ऐसे नरक में ले जाते हैं, हा कुंभीपाक नरक या कुंभीपाक, ये पशु पक्षी कुराते हैं उसको कुंभीपाक नरक, और सुकरमुख जो इलिसिट सेक्स की बात कर रहे थे, इलिसिट सेक्स अगर आप करोगे तो नर्क कैसा है कि वहां स्त्री की और पुरुष की हॉलो लोहे की मूर्तियां हैं और अंदर से आग गैस से लाल लोहे की मूर्ति और उसको आपको जबरदस्ती से एम्ब्रेस आलिंगन किरा कराया जाता है, चुम्बन आलिंगन जबरदस्ती से, और और कब तक, जब तक आपका सांस न ले ले लो। भक्तों को जो बहुत पीड़ा देते हैं उनको भी, उनको बोलते सुकर मुख नर, भक्तों को जो पीड़ा देते हैं। जैसे पाश्चात्य देशों में मैं था तो पेरिस में मैं हरिनाम संकीर्तन में गया था, तो हम कहीं भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन पेरिस में कर रहे थे, तो हमारे ऊपर कोई वहां के कर्मी द्वेषी लोग होते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर टीयर गैस लगाया, टीयर गैस, तो हम अंधे हो गए और कहा क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चला। तो ऐसे भक्तों को जो दुख देंगे तो उनके लिए यह सुकर मुख नर्क है। वहां क्या है, वहां गन्ने के रस को निकालने वाली मशीन होती है, ऐसे 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 ऐसा बड़े चक्के होते हैं, ऐसे घूमते हैं और आपको बीच में डाल के गन्ने की तरह, हर बार गन्ने की तरह आपको डाला जाता है। उनको बोलते सुकर मुख। कई नर्क, 28 नरकों का बयान है, और कई 28 तो किए हैं बयान, लेकिन कई कई नरक हैं ऐसे। तो ये पाप कर्म, ये पाप पाप कर्म, कुंभी पाक नरक, पस पस का सारा कुंड होता है और उसमें कीड़े होते हैं, पस में, पस मतलब जो भी आप बोलते हो उसमें डाला जाता है। तो ये कर्मों की गति है, गहना कर्मणा गति, ये पाप में, पाप से आप ऐसे नरक में धकेले जाओगे। इसीलिए आपको चाहिए कि पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। ये पुण्य पाप को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। डरो कितना 100% रिजल्ट है 100% रिजल्ट नरकों का। डरो, डरोगे तो भक्ति लाइन में आ जाओगे, फिर बाद में कोई डर नहीं, न मैं भक्त प्रणोसिति, कोई डर नहीं। समय हो चुका है, लेकिन मैं वाइंड अप करने के लिए दो शब्द कहूंगा, थोड़े अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो आपने समझ लिया, कोई अच्छा नहीं है यहाँ पृथ्वी पर। अच्छा कौन है, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में अच्छे लोग हैं। क्यों अच्छे लोग हैं, कृष्ण भगवान की 100% सेवा, भगवान को कैसे खुश करें, भगवान हमसे कैसे खुश रहे, एकमात्र चिंता, वो लोग अच्छे हैं। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, अयोध्या में, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में, द्वारिका में, ये सब आध्यात्मिक जगत में धाम है। ये लोग, ये उनको बोलते निरन्न मुक्त, निरन्न मुक्त जीवात्मा है, वो अच्छे है। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन, जो भगवान का भक्त है वो अच्छा है, दूसरे सब बुरे हैं, दूसरे सब बुरे, कर्मी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, बुरे। भगवान ने यह नहीं कहा कि ज्ञानी लोग ध्यानी लोग मेरे पास आएंगे, उन्होंने कहा भक्ति विशिष्यति विशिष्यति, भक्ति से मेरे पास, विसंते तद अंतर, मेरे पास भक्ति अमाम अभी जाना था, भक्ति 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 और कुछ नहीं। भक्ति मतलब श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा है भक्ति। तो हमको कर्म नहीं चाहिए और विकर्म नहीं चाहिए, हमको अकर्म चाहिए। अकर्म मतलब कृष्ण भक्ति, जो करने से हमको अच्छा स्वर्ग नहीं या बुरा नरक नहीं, हमको भगवत धाम, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति ये मिलेगा, तो हमको अकर्म चाहिए। तो हम सब बुरे हैं, मान लो मेरी बात, हम सब बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि हम भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में फंसे हैं। हम सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। कोई धनिक हो इसका मतलब ये नहीं हो अच्छा, कोई गरीब हो इसका मतलब ये नहीं वो बुरा है। अच्छे बुरे का मापदंड है कितने अच्छे भक्त हो, इतनी आप अच्छे हो। जितनी अच्छी आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो इतना आप अच्छे हो, बाकी का तो छोड़ो, शायद नरक में हमें स्वर्ग में जाओ, फिर भी आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो जी माम उपेते तु कहते पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी उपासना करने से पुनर्जन्म आपको नहीं मिलेगा, मेरे पास आओगे, लेकिन जो पुण्य करते हैं वो तप लोग मतलब कि टॉप मोस्ट स्वर्ग ब्रह्म लोग जाते हैं, टॉप मोस्ट स्वर्ग, वहां से क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति अई त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लगनते। वापस आना पड़ेगा। नरसिंह मेहता गाते हैं कि भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक मानाही रे। ब्रह्म लोक मतलब टॉप मोस्ट स्वर्ग, भूतल पृथ्वी पर भक्ति पदार्थ ये बहुत मोटू पदार्थ, बड़ा पदार्थ है, ऊंचा उच्चतर उच्चतम पदार्थ भक्ति पदार्थ है। ब्रह्म लोक में नहीं मिलता है भक्ति पदार्थ, स्वर्गों में भक्ति नहीं है, नरकों में भक्ति नहीं हो सकती। आप बहुत पीड़ित हो तो भक्ति नहीं कर सकते नरक, बहुत सुखी हो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मार्जिनल पोजीशन जब हो, बहुत सुखी नहीं बहुत दुखी नहीं, तो भक्ति आसानी से हो सकती है। ये पृथ्वी पर दोनों सुख दुख का समन्वय है,